दिनांक 17/7/2016 रविवार को पार्ला मुंबई में पंडित श्री अभय कुमार जी देवलाली द्वारा जैन तत्व विचार एवं शंका समाधान।
अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नामाय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहत हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी। बहुत से प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं और उनकी चर्चा प्रारंभ करने के पहले जो एक सामान्य समस्या हमारे युवा वर्ग के सामने रहती है उसके ऊपर मैं 5-7 मिनट बात करूंगा, फिर बाद में प्रश्नोत्तर लूंगा। पहले एक सूचना दे दूं कि एक हमारे कुछ साथियों ने विद्यार्थियों ने IYC इंटरनेशनल यूथ कन्वेंशन का प्रोग्राम रखते हैं और वो 3rd नंबर का जो होने वाला है संडे 24 जुलाई, उसका आप mumukshu.org पर रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। वो 15 साल से ऊपर के लोगों के लिए है, 15 से 40-45 वर्ष तक या जो भी अपने को युवा समझते हो वो जा सकते हैं। उसमें ब्रेकफास्ट भोजन चौबियार सब की व्यवस्था उन्होंने रखी है। उसमें जयपुर से एक बहुत अच्छे विद्वान पंडित संजीव जी गोधा वो आने वाले हैं, उनका अलग टॉपिक है। और पंडित ज्ञायक शास्त्री जो राजकोट से हैं जिन्होंने शास्त्री किया है वो भी आ रहे हैं, और हमारी बेटी ज्ञप्ति वो भी इसमें घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर करेगी। तो वो सब हिंदी इंग्लिश मिक्स होता है बिल्कुल आप लोगों के लेवल का, तो आप उसमें लाभ ले सकते हैं। स्थान नहीं बताया इसमें, तारीख तो बताई पीछे। अच्छा हाँ, रामबाड़ी चंदावरकर लेन माटुंगा सेंट्रल उसमें है। आप जरूर जरूर बच्चे लोग उसमें आवे। देखिए जैसे ट्रेन 2 पटरियों पर चलती है वैसे जैन धर्म की ट्रेन भी 2 पटरियों पर चलती है, एक आचार पक्ष और एक विचार पक्ष। ख्याल में आया ना? हमारे सामने वैचारिक समस्याएं भी बहुत आती हैं और आचरण की समस्याएं भी बहुत आती हैं। हर समस्या के समाधान का एक फार्मूला ये है कि आप ये विचार करें कि हम ये क्यों कर रहे हैं। और क्यों का जवाब ये है कि कोई भी जीव कोई भी क्रिया करता है तो सुखी होने के लिए करता है। नई उम्र में बच्चे समझ लो यौवन को प्राप्त होते हैं तो माँ बाप कहते हैं विवाह करो, वो भी तैयार होता है शादी करना है। तो क्यों करना है? तो सुखी होने के लिए करना है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं करना नहीं करना नहीं करना, तो क्यों नहीं करना था कि सुखी होने के लिए नहीं करना? हमारे पंडित साहब जो हैं रविंद्र जी वो शादी के मामले में जोरदार कमेंट्स करते हैं। 2 दुखी प्राणियों द्वारा सुखी होने का एग्रीमेंट। यानी जीवन का छोटे से छोटा कार्य भी, लौकिक कार्य भी, एक बच्चा सोचता है कि हम इंजीनियरिंग बने के डॉक्टर बने के IIT में जाएं IIM में जाएं, तो ये सोचता है कि इससे मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, यानी जॉब अच्छी मिलेगी, फिर पैसा से 5 इंद्रिय के भोग मिलेंगे, जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। इस तरह मूल में एक ही बात है सुखी होने की। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख तें भयवंत। तो हमारे अंदर जो भी प्रश्न आते हैं कि हम मंदिर क्यों आवे, हम गुरुदेव का प्रवचन क्यों सुने, हम स्वाध्याय क्यों करें, ख्याल में आए ना। और भी जो आपको प्रश्न होते हो, ये चीज क्यों खाएं, ये चीज क्यों नहीं खाएं, तो इन सबका समाधान में एक कम से कम वैचारिक पक्ष में तो सुखी होने के लिए धर्म किया जाता है। धर्म कहते ही उसे हैं जिससे जीव को सच्चा सुख प्राप्त होवे। अभी सुखी होने के मामले में एक थोड़ा एक छोटा सा बात कह के मैं आगे बढ़ाऊंगा। एक लड़का, समझ लो एक फैमिली में, गांव की फैमिली थी, चार भाई थे, बाकी तीन भाई तो बहुत अच्छा काम करते थे। छोटा भाई बहुत आलसी था, माँ के लाड़ प्यार में बिगड़ गया। फिर वो गांव की चौपाल पे, समझ लो आंगन में एक नीम का झाड़ रहता था, उसका चबूतरे पे लेटा रहता, दिन भर आलसी बने कुछ नहीं करता था। कोई पंडित टाइप का आदमी उसके पास पहुंचा, यार तुम ये दिन भर ऐसे फालतू आलसी पड़े रहते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? तो काम करने से क्या होगा, काम क्यों करूं? अरे काम करोगे, मेहनत करोगे, चार पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। पैसे इकट्ठे से क्या होगा? पैसे इकट्ठे हो जाओगे, तुम्हारी इज्जत बनेगी। इज्जत से क्या होगा? कोई अच्छा आदमी तुमको लड़की दे देगा तो तुम्हारी गृहस्थी बच जाएगी। तो गृहस्थी बचने से क्या होगा? तुम्हारा बुढ़ापा आराम से कटेगा। तो मैं अभी आराम से हूं भाई साहब, आप अपना काम करो, मुझे परेशान मत करो। हम सबकी ये स्थिति है, जरा सा पुण्य का उदय हुआ है, मनुष्य पर्याय मिली, थोड़ी बुद्धि मिली, थोड़ा माँ बाप अच्छे मिले, संयोग अनुकूल मिल गया, तो हम समझते हैं हम बहुत सुखी, या और अच्छी पढ़ाई कर लेंगे, और अच्छा जीवन। यानी जैन धर्म की जरूरत इसलिए है कि ये नक्की करो कि पांच इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है, समझ में आया? और इसको टोडरमल जी ने अच्छे अच्छे तर्कों से, आर्गुमेंट से साबित किया है। एक सिंपल तर्क में देता हूं। हम मान लो एक शर्ट खरीदने एक दुकान पे गए, आधा घंटे वहां हमने लगाया और बिना खरीदे वापस आके दूसरी दुकान पे चले गए, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि पहली दुकान में हमको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, हमारे मन की चीज पहली दुकान में नहीं मिली, इसलिए हम दूसरी दुकान पे गए। ख्याल में आया? तो हम सुख के लिए चेंज करते हैं निरंतर। सुबह समझ लो रात में थक के सो जाएंगे, तो अगर सोने में सुख है तो सुबह उठते क्यों? फिर मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, एक घंटा घोड़े जैसे दौड़ेंगे और फिर आगे, फिर बहुत से लोग फिर सो जाते हैं, समझ आया ना? तो उसमें सुख है तो दौड़ते ही क्यों है? और फिर बाद में समझ लो सुबह उठ के हर आदमी को लगता है कि वो पेट खाली होना, ये हिंदुस्तान में 80% रोग पेट से होते, समझ में आया? पेट के कारण, तो पेट खाली करने की समस्या, खाली हो जाए तो फिर भरने की समस्या। यानी चेंज चाहिए, इससे सिद्ध होता है कि हम जो भी क्रिया कर रहे हैं उसमें सुखी नहीं है। हमारे अनंत भगवान देखो, एक बार आत्मा में चले गए तो अनंत 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 काल के लिए उनका उपयोग आत्मा से बाहर नहीं आता, वो आत्मा में ही नींद लेते। सिद्ध भगवान एक बार लोकाग्र में स्थित हो गए तो अनंत काल तक वहां से नीचे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अब जरूरत नहीं, उनको अनंत निराकुल स्वाधीन सुख वहीं मिल गया। तो मूल कॉन्सेप्ट जो है धर्म को, आप क्रियाकांड में देखने के बजाय, ये छोड़ना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे प्रतिबंधों के बजाय आप उसको सुखी होने के उपाय के रूप में देखें, ये मूल चीज है। दूसरी बात, मैं पहले ये देवशास्त्र गुरु की लेता हूं कि अपना धर्म वीतरागी, यानी किसी से राग द्वेष नहीं करना। तो लोगों को ऐसा लगता है, तो बात तो सच्ची है राग द्वेष नहीं करना। फिर ऐसा मेरे पास प्रश्न आया है इसमें, ये हमारे समाज में रहवाना कारण, सामाजिक त्योहारों में दाखिला तरीके, गणेशोत्सव में गणपति ने दर्शन वगैरह भाग लेवो पड़े छे, आवा वक्ते अमे नमोकार मंत्र नु ज स्मरण करिए छे, तो शू अमने दोष लागे छे? अभी स्थिति में भाग शू था कि न लेवो कि लेवो, एवो खुलासो कर सो। पहले ये समझो कि वस्तु स्थिति क्या है। देखो ये जैन धर्म किसी व्यक्ति का धर्म नहीं, खासकर दिगंबर धर्म। नाम जरूर एक दिगंबर संप्रदाय का दे दिया, जब श्वेतांबर डेवलप हुआ तो उसके अगेंस्ट में दिगंबर नाम चालू हो गया। पहले दिगंबर नाम नहीं था। न्याय ग्रंथों में आरहत मत अरंत भगवान के द्वारा कहा गया वस्तु स्वरूप, ऐसा आरहत मत समंत भद्राचार्य की रचनाओं में, उनमें कहीं दिगंबर श्वेतांबर का नाम नहीं। बौद्धों वगैरह का तो है सबका, तो आरहत मत है। तो ये हमारा धर्म है इसलिए हमें पसंद है, ऐसा नहीं है। धर्म हमारा नहीं होता है, जो माने उसका होता है। समझ में? प्रकाश, सूर्य का प्रकाश किसका है? हिंदू का के मुसलमान का? नदी बहती है वो किसकी है? हिंदू के मुसलमान की के जैनी की? वृक्ष में फल लगते हैं, कैरी पकती है, खेत में धान्य पकता है, वो किसका होता है? जो मेहनत करता है, जो उसको अंगीकार करता है उसका है, उसमें कोई संप्रदाय तो नहीं है। यानी प्रकृति के नियम संप्रदायातीत हैं। क्या बोला? कुदरत के जो नियम हैं वो संप्रदायातीत हैं। हिंदू भी वैसे ही सांस लेगा, मुसलमान भी वैसे ही लेगा, उसको भी वैसे ही भूख लगेगी। भूख में कोई फर्क नहीं पड़ता दिगंबर श्वेतांबर हिंदू मुसलमान का। तो वस्तु स्वरूप तो भैया बाड़े से पार की चीज है। तो ये तो अरहंत भगवान के द्वारा कहा गया वीतरागी धर्म है, तो जो इसकी श्रद्धा करे उसका है। तो अब कोई पक्षपात नहीं रहा कि हमारा धर्म सच्चा कि तुम्हारा धर्म सच्चा नहीं, हमारे देव सच्चे कि तुम्हारे देव सच्चे नहीं, ऐसा तो नहीं रहा ना। अभी हम पंच परमेष्ठी को आदर्श क्यों बनाएं, दूसरों को आदर्श क्यों नहीं बनाएं? बस वही आप प्रयोजन विचारो जो अभी मैंने मंगलाचरण बोला, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ये सही घटना है। मैं टोरंटो गया था, वहां पे जो अपना एक सेपरेट दिगंबर मंदिर है, लेकिन उसमें मूल भगवान के बगल में एक पद्मावती की भी मूर्ति उन लोगों ने रख रखी, उनको बड़ा श्रद्धान उन लोगों को था, कई लोगों को। अब मैं बीच में, दोनों के बीच में मेरा आसन लगाया व्याख्यान करने का, एक साइड में भगवान एक साइड में पद्मावती। अभी प्रश्न आया कि पद्मावती हमको इनकी पूजन करना, किनकी करना, किनकी नहीं करना, ऐसा। तो मैं कहता हूं, मैंने उनको पहले दो पंक्तियां सुनाई, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आए। तुम्हारे जैसा बनना वो आदर्श रोल मॉडल है, तो आपका रोल मॉडल ऐसा है कि ऐसा है। समझ रहे हैं? भगवान की तरह इशारा करके बोला कैसा बनना है। अनंत जैसा वीतरागी और सर्वज्ञ भगवान बनना है, तो वो भवनवासी देवी में वो कि जाकर के और फिर वो स्त्री पर्याय में जन्म लेना है, वैसा बनना, जैसा बनना है उसकी पूजा करो। तो अपने जतीश भाई के भाई थे, बोले आपने तो बहुत कड़क बोल दिया कि ऐसा बनना के ऐसा बनना। प्रश्न क्यों करवाते हो फिर? तो हम किसको माने और किसको नहीं माने, इसमें प्रयोजन की बात है। दुनिया को पक्षपात नजर आता है कि हम इसी मंदिर में आए, जहां पे वीतराग मूर्ति नहीं है उधर नहीं जाएं। समझ में आया? उनको कुगुरु कुदेव बोलते हैं अपन, तो वहां नहीं जाएं। तो एक सही घटना है शिकागो में, जो अपने भारतीय बहन भायाणी है ना, उन्होंने सुनाई थी मुझे। वो वहीं अमेरिका में एक किसी सामाजिक फंक्शन में, पार्टी वार्टी में गई होंगी, तो वहां तो सितंबर दिगंबर सब मिक्स इकट्ठे होते हैं, सब करते हैं। उन्होंने उनको बहुत मतलब उलाहना दिया कठोर शब्द, अच्छा तुम ही लोग हो जो कहते हो हमारा धर्म वीतरागी है और फिर पक्षपात भेदभाव करते हो कि इधर जाएंगे इधर नहीं जाएंगे, इधर नमस्कार करेंगे इधर नहीं करेंगे, और बातें करते हो वीतरागता की। अरे जब वीतरागी है तो सबको नमस्कार करो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। समझ में आया? ये देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि हम सबको नमस्कार करें। इसमें भैया विनय मिथ्यात्व है। मैं आपसे लौकिक सिस्टम की बात पूछता हूं। एक विद्यार्थी को इंजीनियरिंग करना है, गांव में कॉमर्स कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। समझ में आया? और इंजीनियरिंग कॉलेज समझ लो 100 किलोमीटर दूर है, तो वो वहां 5-7 लाख रुपया देता है, हॉस्टल का पैसा देता है, वहां पे वहां की किताबें खरीदता है, वहां के टीचर्स का समागम करता है, सब करेगा। सारा समर्पण उसका तन मन धन का कहां होगा? इंजीनियरिंग में। किसी ने आज तक उसके ऊपर पक्षपात का आरोप लगाया कि तुम्हारे गांव में है तो तुमको वहां 5 लाख दिया तो 50,000 इधर भी दो, तुम सप्ताह में 7 दिन 6 दिन उधर जाते, 1 दिन इधर भी आओ, जितने मास्टर हैं सबसे पढ़ो, जितनी किताबें हैं सबको पढ़ो, तभी तो भेदभाव समाप्त तो होगा। ऐसा कभी किसी के दिमाग में आती है बात? बोलो आप मुझे। हैं, मैंने उसमें जो नए रहस्य पुस्तक लिखी है भाई, उसमें एक पक्षाती क्रांत वाला चैप्टर है, उसमें ऐसा प्रश्न किया कि सम्यक दर्शन के दिगंबरों को ही हो सकता है क्या, श्वेतांबरों को हो सकता है क्या, नहीं, हिंदू मुसलमानों को हो सकता है क्या, नहीं। सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक बात है। तो सिद्धांत तो ये बोलता है कि नरक में भी हो सकता है, वो शेर को भी हो गया था, गौतम स्वामी ब्राह्मण थे उनको हो गया था, समझ में आया? तो हर एक संगी पंचेंद्री जीव को हो सकता है, तो फिर आप ये सब भेद क्यों कहते? मुमुक्षुओं को ही होगा, और कांजी स्वामी का भगत होगा उसको ही होगा, दूसरे को नहीं होगा। इसका समाधान, कैंसर का इलाज तो हरेक का हो सकता है, लेकिन हॉस्पिटल कैंसर वाली होनी चाहिए, डॉक्टर कैंसर का स्पेशलिस्ट होना चाहिए, दवाई कैंसर वाली होनी चाहिए। कोई ऐसा पक्षपात नहीं करने के नाम पे, समभाव के नाम पे सब दवाइयां खा लो, कोई भी दवाई है वही खा लो, किसी भी डॉक्टर को दिखा लो, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, ऐसा कभी होता है क्या? मैं ये सब बात इसलिए कह रहा हूं कि इसमें आप पक्षपात की शंका नहीं करें, ये पक्षपात की बात नहीं है, ये प्रयोजन की बात है। जैसे वो कैंसर का दर्दी कैंसर के हॉस्पिटल में ही जाएगा, दूसरे हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, उसे द्वेष थोड़ी है। ऐसे ही अपने को मोहराग द्वेष का अभाव करना है तो हम कौन से हॉस्पिटल में आए कि जहां मोहराग द्वेष का अभाव करने की बात चलती हो, मोहराग द्वेष से रहित, 18 दोष से रहित ऐसे अरहंत परमात्मा का प्रतिबिंब जहां हो, उनकी वाणी जहां हो, तो वो हमारे रोग का इलाज करने की बात है। इसमें पक्षपात नहीं समझना, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा संपत्ति नहीं, औषधि विचार ध्यान। तो सच्चे देव शास्त्र देखो, एक बात और, रास्ता सही कौन सा होता है? आप यहां से मान लो, जैसे यहां तो नंबर नहीं होते, अमेरिका में तो रास्तों के नंबर पड़े होते, मैं उनसे बोलता था, आप समझ लो 180A ऐसा आपने लिया, तो सही है कि गलत है? ट्रेन कौन सी सही होती है, कौन सी ट्रेन अच्छी है, कौन सी सही है, आपकी मंजिल क्या है? रास्ते के सत्य और असत्य का निर्णय कैसे होगा? आपकी मंजिल से होगा, रास्ता तो रास्ता है। इसी तरह से ये जैन धर्म ही सच्चा धर्म है, बाकी सब झूठे हैं। इसका अर्थ क्या है कि हमारी मंजिल है सुखी होना, हमारी मंजिल है 4 गति का अभाव करना, उस मंजिल तक जो पहुंचावे वो रास्ता सच्चा। तब वो अनंत देव ने बताया है, तीर्थंकरों ने बताया है, ख्याल में आया ना? इसलिए कहते हैं कि ये सच्चा। कोई दवाई आपके मतलब की नहीं है तो कहेंगे ये दवाई काम की नहीं, तो वो झूठे हैं कह के उनकी निंदा नहीं करना, लेकिन वो हमारे प्रयोजन के नहीं है, वो सब 4 गति में ही रखड़ने वाले प्रयोजन के हैं, तो ये प्रयोजन की बात है। अभी इसमें प्रॉब्लम तो वो समझने वाला खुद समझता है कि हमको मजबूरी में जाना पड़ता है। देखो भैया, प्रैक्टिकल में तो आपके विवेक से जो आप जितना बच सको उतना बचो, और मजबूरी में जाना पड़े तो दोष तो लगता है, समझो तो कि ये दोष में दोष है। उसने देखो कितनी चतुराई रखी कि हम तो ढमोकार मंत्र पढ़ते उधर जाके तो मतलब वो अंदर में जानता है कि ये जो एक कल्पित मूर्ति है, ये राग द्वेष वाली मूर्ति है, ये श्रृंगार वाली मूर्ति है, ये हमारा आदर्श नहीं है। मैंने एक उदाहरण अमेरिका में दिया था, मैं दोबारा कहता हूं बच्चों के लिए, ये श्रृंगार वाली मूर्ति, मुकुट लगा है, हार लगा, कई बच्चों को ऐसा होता, हमारे बगल में श्वेतांबर मंदिर, अरे ये बात तो प्रमाण सागर महाराज से मुमुक्षुओं के बारे में प्रश्न पूछा गया कि एक भाई सिंगापुर में रहते हैं, उनने कहा कि हमारे 8 किलोमीटर दूर मुमुक्षुओं का मंदिर है और 20 किलोमीटर दूर अपना मंदिर, मुमुक्षुओं का वो अपना नहीं, 8 किलोमीटर सही कहे, पारस चैनल पे आया था। तो हमको उन मुमुक्षुओं के मंदिर के दर्शन करने जाएं तो कोई दोस्त तो नहीं लगता। उनने बड़ी चतुराई वाला जवाब दिया कि भैया उधर भी वीतरागी भगवान है, इसलिए उसमें दोष नहीं है, लेकिन वो कोशिश करोगे अपने घर में ही चैत्यालय बना ले ताकि उधर नहीं जाना पड़े। सोचो, ये है चिंतन, समझ में आया ना? तो स्वेतंबर मंदिर में जाने में क्या दोष है? अरे भैया, पहले तुम वो निर्णय तो करो कि तुम्हारा आदर्श उधर है क्या, आदर्श कौन है? वो तो भगवान तो एक ही है, तो फिर मूर्तियां अलग क्यों है? भगवान एक ही है तो मूर्तियां अलग, आपके पिताजी तो एक ही है, तो समझ लो। वैसे मैंने उदाहरण दिया कि बिल क्लिंटन का स्टैचू बनाओ, उस समय वो राष्ट्रपति थे, ओबामा का बनाओ और उसको ड्रेस गांधी जी वाली पहनाओ, आधी धोती और खादी की चादर और फेस ओबामा का रखना, तो ये उसका सम्मान होगा कि अपमान होगा? समझ में आएगा? इसी तरह गांधी जी का स्टैचू बनाओ और फिर उसको सूट पेंट और टाई वगैरह लगा दो और फिर कोई कहेगा कि ये गांधी जी की, भले गांधी जी ने पहना था जब वो वकालत पढ़ते थे तो उन्होंने वैसी ड्रेस पहनी थी, लेकिन आज हमारे आदर्श तो वो नहीं है ना। तो उसमें भैया श्रृंगार वाले भगवान को मानने का बड़ा मिथ्यात्व का दोष आता है। तो आप भले अपने घर में वीतरागी भगवान की फोटो के सामने पूजा पढ़ लें, ख्याल में आए ना, जो भी क्रिया है वो करें, थोड़ा सत समागम के लिए वो करें, लेकिन उधर जो है वो गृहित मिथ्यात्व का ही दोष है, क्योंकि अपने वो देव और कुदेव का विवेक नहीं रखा, वो वीतराग देव की विराधना है। तत्वा सूत्र में आता है केवली सुत संग धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्य, केवली भगवान का वीतरागी भगवान का अवर्णवाद है, इसमें पक्षपात नहीं है, उनसे द्वेष नहीं है, हमने वीतरागता को आदर्श बनाया है। जैसे वो इंजीनियरिंग कॉलेज का बच्चा जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर को आदर्श बनाता है, क्रिकेट की जिसको रुचि है वो क्रिकेट में जो है एक्सपर्ट जो हुए हैं, तो सचिन हो कोई भी हो, वो उनको आदर्श बनाता है, तो फुटबॉल वाले की तरफ नहीं देखता है। तो ये प्रयोजन की बात है। एक है संप्रदाय ना साधु साध्वीय बाह्य आचरणनी दृष्टिए तो अमारा थी वधारे पालन करे छे, तो पछी तेमने नमस्कार आदि आदर आपवो के नहीं। ये एक गुरुदेव की सभा में भी प्रश्न आया था, वस्त्र पावट चलता था और उसमें शिथिलाचारी मुनि वगैरह का वर्णन बहुत है, तो एक श्रोता ने पूछा कि हमसे तो अच्छे हैं, गुरुदेव ने इतना बढ़िया जवाब दिया, बिगड़ा हुआ दूध अच्छा है कि छाछ अच्छी। इसको मैं दूसरे स्टाइल से समझाता हूं। एक लड़का बीए का एग्जाम में बैठा और फेल हो गया, क्या बोला? बीए के एग्जाम में बैठा और फेल हो गया। और एक लड़का 5वीं कक्षा के एग्जाम में बैठा और 98% लिया उसने, होशियार कौन है? वो बीए वाला उन दोनों की सरखामणी करने लायक है? अरे उसको उसकी कसौटी पे कसा जाएगा, 5वीं वाले को 5वीं के लेवल से देखा जाएगा, समझ में आया ना? आप होशियार किसको मानोगे? हमसे तो अच्छे हैं ये बहुत स्थूल दृष्टि है, ये विपरीत दृष्टि है। अच्छाई तो तत्वज्ञान में है, अच्छाई तो वस्तु स्वरूप को समझने में है। अभी गुरुदेव ने कितनी बार बोला कि ये सब व्रतशील संयम, अभी एक मार्मिक बात आई थी, उनने बोला 11 अंग तो पढ़ने से, मतलब उनका अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती, 9 पूर्वों की स्टडी नहीं होती है, वो पढ़ने से नहीं आता है, वो 6 उपसम लब्धि से प्रकट होते हैं, 9 पूर्व का ज्ञान, तो वो भी अनंत बार हुआ। तो ये बाह्य आचरण से नापना ये कोई बहुत समझ लो सही मापदंड नहीं है। सही मापदंड वस्तु स्वरूप का, तत्व ज्ञान का, तत्व निर्णय का है, वो हमें लक्ष्य में रखना चाहिए। आपको सब उनका नमस्कार करने में क्या दोष है? देखो सामान्य शिष्टाचार एक अलग बात है कि जय जिनेन करना है, उनकी निंदा नहीं करना, उनका अपमान नहीं करना, ख्याल में आए ये तो एक करने ऐसा तो रखना ही चाहिए, लेकिन उनके प्रति भक्ति, उनके प्रति विनय, समझ लो आप उस शिथिलाचार को और उस उन मार्ग को सपोर्ट कर रहे, ये इसमें बहुत बड़ा मिथ्यात का दोष है। छठवें अधिकार में टोडर मलजी ने इतनी कठोर बात लिखी है कि ये गृहित मिथ्यात जो है सत्य व्यसन से भी ज्यादा बड़ा पाप है। शराब पीता है आदमी, उसका समर्थन तो करने का सवाल ही नहीं है, लेकिन शराब पीने वाले की तो उतर जाती है, गृहित मिथ्यात का नशा कभी उतरते ही नहीं है, वो भाव भाव में रुलाता है। ऐसा लिखा है सांप के काटने से एक बार मरता है, कुगुर कुदेव के काटने से अनंत भव में मरण होता है, क्योंकि उसने आपको कुमार्ग में लगाया, खोटे मार्ग में लगाया। एक और मजे की बात बताता हूं, आपको जो बीमारी है उसका इंजेक्शन 10,000 रूपये का आता है, समझ में आया, और एक आदमी जो है वो फ्री में दवाइयां बांटता है, तो फ्री वाली दवाई अच्छी कि 10,000 रूपये वाला इंजेक्शन अच्छा? समझ में आया? अरे हमारे रोग दूर किससे होगा, वो भले 10,000 में मिले, 50,000 में मिले, हम तो उसको लगाएंगे ना, वो फ्री वाला असली है कि नकली है, कि क्या है कि क्या नहीं है, वो हमारे काम का है कि नहीं है, ये तो देखना पड़ेगा ना। तो इसलिए वो सामान्य शिष्टाचार, हम लोगों को भी यही प्रॉब्लम आती, हम लोगों को भी आपके यहां जैसे आपके साधु साधु भी आते, हमारे यहां भी हमारे साधु आते, माता जी आती, सब आते, तो एक सामान्य व्यवहार रखते हैं, ख्याल में आया ना, वो तो बड़ा उत्सुक भी रहते कि आप लोग आओ हमसे चर्चा करो, ये करो वो करो, लेकिन बड़ा महंगा पड़ता है वो समागम, बहुत कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए जितना हो सके बचना भैया, अपने हित को मुख्य रखना। हमारा माता पिता वगैरह कुल देवी देवी वगैरह ने मानता हता, तो हमारे तेमने आदर आदि करबो के नहीं, मेहरबानी करीने खुलासो करबो। कल आ गया इसका जवाब, कुल अपेक्षा धर्म नहीं चलता है। कुल देवी क्या होता, हमारे तो सिद्ध भगवान के कुल के हैं, पंच परमेष्ठी हमारे कुल के हैं, वो हमारे कुल देव हैं वास्तव में, पूरे जैन कुल के, बाकी कोई रागी द्वेषी है क्योंकि उसकी मूर्ति भी आप देखो तो कोई ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ पूजने लायक या नमने लायक, जगत तो इतना मूढ़ है कि पत्थर में सिंदूर लगा दिया तो वो पूज्य हो गया, कोई गाय पूज्य हो गई। देखो गाय की सेवा करना, गाय को घास देना, करुणा पालना, वो मानवीय शिष्टाचार है, उसे धर्म वर्म का कोई संबंध नहीं है। करुणा एक मनुष्य का सहज स्वभाव है, ख्याल में आया ना, क्रूरता वो मनुष्य का स्वभाव नहीं है। तो पशुओं को चारा देना, पशुओं को पानी देना, मैंने व्हाट्सएप पे गर्मी के दिनों में मैसेज पढ़े कि आप अपने छत पे कटोरे में पानी रख दीजिए, नहीं तो पक्षी बेचारे सब प्यास से मर जाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, पर इसमें धर्म नहीं है, समझ में आया? और ये कुल देवी देवता वगैरह में तो समझ लो वही आपने राग द्वेष को ही आदर्श माना, तो मिथ्यास का बड़ा दोष है, तो उसे रखने ही नहीं। उसके कोई माता पिता को समझाओ, हैं बच्चे पाठशाला में पढ़ेंगे तो माँ बाप को समझाएंगे कि वीतरागी देवी हमारे आदर्श हैं, दूसरा कोई हमारा आदर्श नहीं है। द्विदल के स्वरूप के बारे में एक बहुत समझ लीजिए प्रश्न बहुत आए हैं। द्विदल का मतलब ये होता है कि देखिए दही जो होता है ना, वो दही और छाछ, उसमें कठोल जिसके दो टुकड़े हो जाते हैं दाल, उसका जब मेल होता है और वो मुख में जाता है, तो मुख की लार के साथ में जैसे ही वो मिक्स होता है तत्काल उसमें त्रस जीव उत्पन्न हो जाते। कई लोगों ने बताया कि वो तीतर पकड़ने वाले या जो ऐसे जो पक्षी वगैरह जो कीड़े खाते हैं, तो वो बेसन में दही मिला के उसमें थूक देते तो उससे कीड़े उत्पन्न हो जाते और वो उनके पक्षियों को खिलाते हैं, तीतर वगैरह को, ऐसे लोगों ने प्रैक्टिकल करके बताया। तो ये बहुत बड़ा दोष, मांसाहार जैसा दोष है ये। आपको विशेष जानकारी चाहिए तो प्रसाद सिद्धि उपाय और रत्नगण श्रावकाचार वगैरह में पढ़ना। कठोल के और दही और गुड़ का भी ऐसे ही है, दही का गुड़ के साथ में आप मिक्स करोगे और फिर उसको मुख में डालोगे तो उसकी लार में तुरंत इल्ली वगैरह जैसे होते हैं ना, वो त्रसजी उत्पन्न हो जाते हैं। पेट में नहीं होते, मुख की लार में होते। अब बिना मुख की लार के तो जाएंगे नहीं अंदर, तो ऐसा क्यों आग्रह रखना, ख्याल में आया ना। उसके बदले में बहुत सी ऐसे अभी आइटम डेवलप हो गए हैं कि आपकी रसना इंद्री पुष्ट हो सकती है और आप हिंसा से भी बच सकते हो। ये आचार जो है, आचार वाली जो रेलवे लाइन, वो हिंसा से बचने के लिए है, और विचार जो है वो मिथ्या और कषाय से बचने के लिए। मैंने कहा ना जैन धर्म की दो पटरी, आचार और विचार। तो विचार जो है वो मिथ्या और कषाय से बचाने के लिए, और आचरण जो है हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये पाप से बचाने के लिए। बहुत से लोग कहते हैं उसको गर्म कर ले रहे, तो कई लोग ऐसे, खासकर मारवाड़ी समाज में, हमारे यहाँ पाटनी जी थे मंत्री हमारे जयपुर में, तो वो उसको अलाउ करते थे कि गर्म करके खाने में कोई दोष नहीं। एक कई ग्रंथों में ऐसा गर्म ठंडे का भेद नहीं किया, उन्होंने तो दही और छाछ का ही ऐसा लिखा है। तो जिसमें एक सही घटना है, गुरुदेव के चर्चा हो रही थी रात को, मैं भी वहां हाजिर था, कोई खाने पीने की बात में बात चली, तो जब खाने पीने की बात आती है तो उसमें इधर उधर के बहुत सी बातें हो जाती, तो गुरुदेव ने एक कमेंट्स दिया और मामला क्लोज कर दिया। गुरुदेव बोले जिसमें शंका हो गए उसको खाने ही नहीं खत्म मामला, अभी काय को झंझट में पड़ना। तो इसमें ज्यादा हुआ पोह करने की जरूरत नहीं है, ये द्विदल से बचना चाहिए, इसमें मांसाहार का बहुत बड़ा दोष होता है। आजकल क्या बाजार नु भोजन आदि नु चलन खूब बढ़ी गयो छे, ये चीज बटर एक बात है, ये जैसे बनते हैं ना वो प्रोसेस देख लो आप। एक बार अखबार में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, जब मैं जबलपुर में पढ़ता था कॉलेज में, तब की बात, लोकल पेज में, एक लड़का था वो बड़ा व्यसनी हो गया, शराब पीने लगा, वेसा सेवन करने लगा और जुआ खेलने लगा। सुनना बड़ी मजेदार बात। अब उसके फादर को बड़ी चिंता हुई कि इसको लाइन पे कैसे लगाया जाए, कहने से तो और उल्टा रिएक्शन होता है, ये समझ लेना। सामने वाला क्रोध में हो तो कभी उसको मत समझाना, वो सब उल्टा पड़ जाएगा। सामने वाला जिद में हो तो कभी मत समझाना। तो पिता को बड़ी चिंता हुई, उनने काफी विचार करके उसको बेटे को बुलाया। हमने कहा यार आजकल हमने सोचा है कि तुम शराब पीने लगे हो। अरे आजकल पिताजी सब चलता है, आप पुराने जमाने की बातें करते हो। मैंने पीते हो तो अच्छी बात है, हमको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कब बनती होगी, कब बॉटल में जाती होगी, कितने दिन वहां पड़ी रहती होगी, इतनी बासी सड़ी पीने से क्या फायदा। अरे ताजी ताजी फ्रेश पीना चाहिए भाई, तो जहां बनती है तुरंत वहां जाके तुरंत जाके पीना चाहिए। तो ऐसे उसने सलाह दी उसको, समझ में आया। और जब देखा बनने वाली जगह पे कैसे सड़ाते हैं, कैसे क्या करते हैं, क्या प्रोसीजर है, तो अकल आ गई, हाथ जोड़ लिया। ऐसे वेसा सेवन के बारे में पूछा कि तुम फलानी बाई के पास में जाते हो, अरे पिताजी अब थोड़ा दोस्ती है तो थोड़ा जाके बैठ जाते, ऐसा बात के। देखो ऐसा है, कब जाते तुम, रात में जाते, पागल हो, दिन भर की थकी मांधी, समझ में आया ना। अभी उसमें क्या एनर्जी होगी जब वो भी थक गई है, तब तुम उसके पास मन बहलाने जाते हो। सवेरे 5 बजे जाना चाहिए, जब बिल्कुल फ्रेश हो गए तब जाना चाहिए। ये तो कहानी है, उसमें पढ़ी मैंने अखबार में। तो 5 बजे वो पहुंचा, वेल कॉल वेल दवाई, तो जो उसको मेकअप में वो बिल्कुल वैसे मोम की गुड़िया जैसी सजी दिखती थी ना, तो उसके बदले बिल्कुल खुले बाल और वैसे आंखों में कीचड़, वो मेकअप भी नहीं, तो उसे देखा ही नहीं गया कि ये वही है जिसके साथ में हम मिलते हैं। ओरिजिनल चीज को देखो आप, आत्मा भी देखना हो तो ओरिजिनल देखना। समझ में आया ना। तो उसका वो व्यसन छूट गया। फिर तो जुए वाले से पूछा कि कहां जाते हो, किन के साथ खेलते, दो चार नाम बता। अरे ये क्या दो कोणी के आदमी, उसने जो नामी जुए थे जो बिल्कुल कंगाल हो गए थे उनके नाम बता दिए, वो शंकर लाल और बद्री प्रसाद ऐसा लिखा था उसमें, उनके पास जाके खेलो। उनको पता कर करके गया तो वो जो वो कोड़ी होती ना बच्चे लोग खेलते कोड़ी बोलते ना वो अष्टक बना करके खेलते हैं जो हाँ तो वो बेचारे वो खेल रहे थे। उनके यार तुम लोगों की ऐसी दशा कैसी हो गई? बोले सब हार गए सब बर्बाद हो गए सब चला गया मन बहलाने के लिए यही करते भैया बाजार की चीज। और आजकल तो ये अखबारों में और ये व्हाट्सएप वगैरह पे बहुत आता है ये ग्रीन लेवल जिसमें होता है उसमें भी बहुत खतरनाक होता है। उनका जो जन्म प्रक्रिया है कोई भी चीज की वो बहुत हिंसक और घृणित होती है। तो अपना घर में बना हुआ चीज शुद्ध साफ खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और हिंसा से भी बचोगे आप। वेज नॉन वेज होटल मां क्या है जम्मा मां दोष छे। खरेखर तो जिसने बाजार का पानी भी छोड़ दिया ना अनछना पानी का त्याग कर दिया तो वो तो होटल में जा ही नहीं सकता कभी, ऐसा है। अभी आप लोग तो छूट मांगते हो कि जहां नॉन वेज नहीं होवे प्योर वेज होवे वहां जा सकते कि नहीं जा सकते। अरे वेज वाले भी वो भी नॉन वेज जैसा ही है। हम जब पहली बार शायद अमेरिका गए थे हम लोग 99 में 10 लक्षण पर्व में एयर इंडिया की फ्लाइट थी तो कुछ भी लिया नहीं, अपना पानी वगैरह सब साथ में ही रखते थे। उस समय तो पानी भी अलाउ करते थे, अभी भी अंदर जाके पानी ले सकते हैं। तो जो वहां का एक अधिकारी था फ्लाइट में जो वो बोला क्या बात है आप लोग हमारा कुछ खा नहीं रहे? हम लोग बाजार बाहर का कुछ नहीं। अरे हमारा बिल्कुल शुद्ध है, ये बाजार की रवा जिसका आप बढ़िया ढोकला बनाते हो है, वो रवा कैसे बनती है कितनी उसमें, वो भले चीज शुद्ध हो लेकिन उसकी प्रोसीजर में अशुद्धता बहुत आ जाती उसमें। फिर वो सड़ी है, वो मौसम कैसा हो रहा है, कहाँ खड़ी है। आप ये टीवी वगैरह पे कितना दिखाते हैं ये बड़े बड़े जो 5 स्टार होटल जो है ना, आप कभी इंक्वायरी करने के हिसाब से कि आपका पहले तारीफ करना कि आपका होटल बहुत बढ़िया है, मैं 100 आदमी लोगों की पार्टी यहाँ लेके आना चाहता हूँ तो मैं थोड़ा आपका किचन देखना चाहता हूँ, देखना किचन जा करके है कितने दिन पुराना सूप कितने सुबह की शाम को 2 दिन पुरानी ये वो सब, मतलब आप खड़े नहीं रह सकते, रेलवे की पेंटी कार के कोच में आप खड़े नहीं हो सकते। और ऐसा सब न्यूज आती है तो क्यों उसका मोह रखना भैया है, अपने शरीर को भी बचाओ और आत्मा को भी बचाओ। टाइम तो हो गया है और 1-2 पर्चे तो निबट गए। एक बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर आए हैं, मैं बहुत 5-7 मिनट में शॉर्ट में उनकी चर्चा करता हूं। ये दिदल का ये एक है जिसकी चर्चा अपन ने पहले कर दी है, दूसरी ये भी कर दी, अन्य दर्शनना देव देवी लक्ष्मी सरस्वती हनुमान जी नु पूजन मिथ्याच्छे। लग्न संबंध सब ये गणेश स्थापना करवी जोइए। ये बहुत मार्मिक बात है, हम लोग शास्त्री हुए ना तो इससे बड़ा डरते नहीं, शादी नहीं खुद की कर लेना भले दूसरों की नहीं कराना, क्योंकि उस पंडित की बहुत इज्जत खराब मानी जाती जो अरे पंडित जी शादी कराने आए हैं 1000-1100 पहले तो 11 रुपए देते थे अभी तो 1100 दो काम चल जाएगा ना। हमने अपने विराग को बहुत समझाया कि ये अपन इसको प्रोफेशनलिज्म दो, इसमें धर्म का कोई संबंध नहीं है, न आप धर्म का ले रहे हैं न कोई धार्मिक कार्य कर रहे, लेकिन एक गृहित मिथ्यात से समाज को बचाने के लिए, क्योंकि लग्न पत्रिका में गणेश जी की मूर्ति ख्याल में आए ना उसमें सब बोई, फिर जो वो पंडित आएगा तो वो गणेश जी की पूजा कराएगा, वो गणेश जी की स्तुति पढ़ेगा, संस्कृत में पढ़ेगा आपको समझ में नहीं आएगा उसने क्या बोला है। तो एक वितराग भाव के अनुरूप जैसा कि मैं इधर आया था वो केतार्थ की शादी में मैंने उसका उदाहरण कई जगह लोगों को दिया कि इस स्टाइल से और इस पद्धति से होना चाहिए। और हमने भी देवलाली में रखी तो इसी स्टाइल से रखी सब। तो भैया ये गणेश स्थापना वगैरह जो है ये रागी द्वेषी देवों की स्थापना है। गणेश का मतलब तो गणधर होता है, गणेश का तीर्थंकर भी होता है और गणधर भी होता है हाल में आया, लेकिन वो जो कल्पित जो चल गया है उसमें बहुत बड़ा दोष आता है। बारंबार क्रोध मोह मान जेवा कसायो एमने काबू मां केवी रीते राखवा। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। सबसे पहले अपने को उससे भिन्न जानना, वेद ज्ञान ही मिथ्या तौर कषाय से बचने का उपाय है, और वेद ज्ञान के लिए सत्शास्त्रों का अभ्यास करना। एक जैन तरीके अपनी रोजनी दिनचर्या केवी होवी जोइए। अभी तो हर एक की अलग अलग है, कोई बच्चा स्कूल पढ़ता है, कोई कॉलेज पढ़ता है, कोई दुकान में जाता है, कोई कहीं जाता है, तो यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकता उसमें। लेकिन देव दर्शन समय, अगर पूजा का समय नहीं है तो दर्शन तो कम से कम करे। थोड़ा समय है वे तो 15 मिनट सही एक पूजा पढ़े, ख्याल में आए ना, और स्वाध्याय, ये उसके जीवन में अवश्य होना चाहिए। अब वो आगे पीछे जब जैसा भी उसका पर्सनल लाइफ हो उसके हिसाब से करता है। साधर्मी भक्ति एटले सू, भक्ति है क्या है ये? खैर जो भी हो, खरेखर तो एक व्यक्ति को, साधर्मी को दूसरे साधर्मी के प्रति वात्सल्य सहज होता है। अपने यहां सम्यक दृष्टि का वात्सल्य अंग है। भक्ति तो पंच परमेष्टि की होती है, उसके नीचे की नहीं होती, समझ लेना है। विद्या गुरु भी हैं, कितने ही उपकार माने विद्या गुरु का, लेकिन उनकी मर्यादा विद्या गुरु तक ही होती है। तो वात्सल्य भाव की बात अलग है। एक बड़ा विचित्र प्रश्न है, कोई प्रत्यय दया हो भी ते मोहनो प्रकार नथी। दया एटले सू, अभी हम कहीं शायद आ ही रहे थे देवलाली से इधर, तो सामने एक गुड्स वाला टेम्पो जो है, छोटा हाथी बोलते, उसके पीछे लिखा था दया दुख का कारण है। और ये बात प्रवचन सार में लिखी, सिद्ध चक्र विधान में। आप जानते हैं दया किसको बोलते हैं? दूसरे को दुखी देख के अपने मन में दुख उत्पन्न होना, इसका नाम दया है। दूसरे को दुखी देख के खुशी होना, ये तो निर्दयता है, ये तो क्रूरता है, ये तो इंसानियत भी नहीं है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव कि कोई भी दुखी प्राणी होवे तन से मन से धन से, तो अपने को लगता है यार अपन कुछ इसके निमित्त बने, इसका कुछ इलाज करें, ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं है। तो ये दया भी स्वभाव है, ये भी दुख का कारण है, लेकिन धर्म नहीं है। ख्याल में आया? स्वभाव है लेकिन धर्म नहीं। समाज सेवा ना कार्य, जैम के गरीबों माटे चिकित्सा अभ्यास नी सगवड़ करवी धर्म कहवाए। अरे गुरुदेव तो कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु की भक्ति में पंच महाव्रत पालने में भी धर्म नहीं है। राग में तो धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि राग बंध का कारण है, धर्म तो मुक्ति का कारण है। तो जो बंध का कारण है वो मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है? ये सुना आपने, गुरुदेव बोलते हैं जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधा है ते भाव पण बंधनु कारण छे माटे ते धर्म नथी। तो हमारी लाइफ में है वो अलग मैटर है, क्योंकि हम सामाजिक सोशल लाइफ भी जीते हैं, फैमिली लाइफ भी जीते हैं, बिजनेस लाइफ भी जीते हैं। ये उसको धर्म मानना ये तो मूर्ता है, ये तो लौकिक कर्तव्य है, वो अलग चीज है। आपके पास पैसा बहुत है तो आप चैरिटी वर्क भी करो, लेकिन वो मोक्ष मार्ग में भी निमित्त नहीं है। वास्तव में मोक्ष मार्ग में निमित्त तो ये है, ऐसे जिनायतन बनाना। हम तो कहते जहां नहीं हो, जहां जरूरत हो वहां बनवा देना, समझ में आया? फिर उसका स्वाध्याय परंपरा चले, ये बहुत अच्छा काम है, ये वो भी धर्म नहीं है। अभी एक मजेदार प्रश्न है, सुनो भाई, हूं करता नथी तो ये कषाय करया तेनो दोष केम लागे छे? कषाय निषेध करवामां केम भलामण करी छे? आत्मा तो कषाय करता ही नहीं है, वो तो पुण्य पाप से भिन्न है। अरे भैया, वो दृष्टि के विषय त्रिकाली ध्रुव की बात है। जैसे आज गुरुदेव ने कहा, वस्तु में द्रव्य पर्याय दोनों हैं, और पर्याय फिक नए से देखो तो आत्मा कषाय का करता है। आज आया था, मैंने उसमें टीका का अनुवाद में लिखा कि हे भगवान, आप शुद्ध नए से आत्मा को राग का कर्ता कहते हो, ये कौन सी विवक्षा है ये हमको समझ में नहीं आया, ऐसा उसमें लिखा है। तो ये भी एक अपेक्षा है, अकर्ता स्वभाव वो अवलंबन करने लायक है, लेकिन परिणमता है तो जीव करता है, दुखी होता है, कषाय से दुखी होता है, इसलिए कषाय का निषेध किया जाता है। हाँ हाँ बस ना, इसमें सब उसी प्रकार के हैं, बाकी तो सब हुई। बोलिए आप में से कोई तत्काल का कोई हो गए थे। बाहर नहीं पूछना, यहीं पूछ लो भैया। देखो वही मैंने कहा ना, किसी की हेल्प करने का भाव शुभ भाव है, तो वो भाव के अनुसार तो बंद होता है, पुण्य मिलता है, मिलता क्या है, पुण्य का बंद होता है। परंतु हमारा लक्ष्य पुण्य बंद नहीं होना, और इस भाव से करे कि हम ऐसा करेंगे तो पुण्य बंधेगा, ये तो स्वार्थ हो गया। हम भगवान की पूजा करेंगे तो पुण्य बंद हो गया, हम किसी बच्चे को फीस उसकी व्यवस्था कर देंगे तो हमें तो पुण्य मिलेगा, उसका जो होना होगा हो, ऐसा नहीं, उसके हित का भाव होता है। देखो बड़ी विचित्र सिद्धांत ये बोलता है कि आप किसी का भला बुरा नहीं कर सकते, ऐसा श्रद्धान होने पर भी आचार्यों को भी करुणा करके ग्रंथ लिखने का भाव आया। गुरुदेव ने 45 वर्ष तक धारावाही, दो टाइम स्वाध्याय और एक टाइम चर्चा का आंदोलन चलाया कि जगत के जीव समझे, तो वो कमजोरी है, अपने राग की कमजोरी से भाव आता है, परंतु हम उसका भला करते हैं ऐसा मानने के साथ में अगर किया तो मिथ्यात का बंद होगा, पुण्य तो होगा जरा सा धूल जितना, और मिथ्यात का बंद पहाड़ जितना होगा। तो मान्यता सही करना, मदद करने की बात तो लौकिक बात है। और किसी को है कुछ? सब समाधान होंगे, स्वाध्याय करना भैया, स्वाध्याय से सब समाधान मिलता है। एक इसमें यह भी है कि हमको स्वाध्याय, एक मिनट, स्वाध्याय करना हो तो कहां से शुरुआत करें, इस टाइप का भी इसमें, जैन धर्म ना अभ्यास नी शुरुआत केम करवी है, जिन दर्शन और स्वाध्याय, और स्वाध्याय में भी लघु सिद्धांत प्रवेश का, छह ढाला, ये पहले ये लेना, तत्वा सूत्र वगैरह, द्रव संग्रह, तो उससे आपकी बेस तैयार हो जाएगी, फिर आप ऊंचे ग्रंथ भी ले सकते हो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा। बोलिए देखो, लौकिक शिष्टाचार निभाना अलग चीज है, कोई आमने सामने हो जाए तो जय जिनेन करना, समझ में आए ना, शिष्टाचार वाला वर्तन करना अलग चीज है, और उसको गुरु मान करके विनय करना, तो आपको मोक्ष मार्ग की पहचान नहीं है, मोक्ष मार्ग के निमित्त की पहचान नहीं, उसमें वही मैंने जो बात कही फार्मूला, प्रयोजन उसको आदर्श मानना और अपने से बड़ा मानने का क्या क्या मतलब होता है। ये सब चीजें संसार में, तो देखो एक सातवें नरक में सम्यक दृष्टि नार की, और नौवें ग्रीवक में मिथ्या दृष्टि देव, कौन ऊंचा कौन नीचा, कौन अच्छा कौन बुरा, किसकी पोजीशन अच्छी है, वो भले सातवें नरक में है लेकिन भेद ज्ञान है तो वो मोक्ष मार्गी है, और वो नौवें ग्रह का देव है कि समोसरल में बैठा हुआ मिथ्या दृष्टि देव, तो भी वो संसार मार्गी है। तो आपको प्रयोजन मोक्ष मार्ग का विचार करके इसका समाधान लेना चाहिए, बजाय लौकिक व्यवहार का। लोक व्यवहार में मिलना जुलना, आदर करना, विनय करना, वो जुदी चीज, आपके घर पे आ जाए तो आप कुर्सी भी देंगे, ख्याल में आए ना, तो कलेक्टर आ जाए, मान लो वो नीची जात का हो तो भी आपको चेयर देंगे, उसको ऊंचा बिठाएंगे, उसका रिस्पेक्ट करेंगे, ये लौकिक बात है। परंतु धर्म के क्षेत्र में हम उसे आदर्श माने या अपने से ऊंचा माने, इसमें कोई माल नहीं। और फिर वो सब वो छह डाला पढ़ो, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन तेते जे जे करनी तन करन छीन। तो आत्मा को जाने बिना और ये कुतप तपना, ये सब कुतप में जला जाता है। तो उसमें कोई समझ लो आत्मा का हित नहीं है, वो बचना चाहिए, ऐसे प्रसंगों को अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। और कुछ डिमांड पहले से आ गई। हमको ये कहा कि अकेले आप गाना, पब्लिक रिपीट नहीं करेगी, लेकिन उसमें वो रस नहीं बनेगा। तो हम जो यंग स्टार्स हैं, तो जो दो पंक्तियां तो मैं अकेले बोलूंगा, वो जो अंतरे वाली आती, वो मुखड़ा है, वो आप सब बोले, वो सरस मजा आएगा। हैं, चलो। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों, दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको, शुद्धात्मा में ही जब लीन होने को, किसी का मन मचलता है, तीन कषायों का तब राग परिणति से सहज ही टलता है। हो वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने, वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है, दिगंबर वेश न्यारा। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको, पंच इंद्री का विस्तार नहीं जिसमें, वह देह ही परिग्रह है, तन में नहीं तन्मय है, दृष्टि में चिन्मय, शुद्धात्मा ही ग्रह है। ओ पर्यायों से पार, पर्यायों से पार, त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है, पर्यायों के पार, पर्यायों से पार, त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है, दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, निर्ग्रंथों का
मूल गुण पालन जिनका सहज जीवन, निरंतर स्वसंवेदन, एक ध्रुव सामान्य मैं ही सदा रमते, रत्नात्रय आभूषण। ओ
निर्विकल अनुभव, निर्विकल अनुभव से ही जिनने निज को श्रृंगारा है, निर्विकल अनुभव,
निर्विकल अनुभव से ही जिनने निज को श्रृंगारा है दिगंबर वे सन्यारा है निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान जब धरते हैं मोह रिपु क्षण में तब भस्म हो जाता श्रेणी जब चढ़ते हैं हो अंतर मुहूर्त में जिनने अनंत चतुष्टय धारा है अंतर मुहूर्त में जिनने अनंत चतुष्टय धारा है दिगंबर वे सनारा है निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है
बोलिए मोक्ष मार्ग साधक अंतर्बाह परिग्रह रहे सर्व वितराग निर्ग्रंथ मुनिराज की जय हो। बलिया आप बोलिए।